पते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ये दसवां स्कंध है, अध्याय 24 है, गोवर्धन पूजा, और श्लोक संख्या 35 से अब हम शुरू कर रहे हैं। और अभी तक ये हमने जो सुना है कि भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं और स्वयं एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया है, और ये घोषणा करते हैं कि मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों का भय दूर करने के लिए कोमल स्वर में और मधुर स्वर में ये बोल रहे हैं, ताकि इतना जो बड़ा रूप है कृष्ण का उसे देख करके ब्रजवासी भयभीत ना हों। कृष्णस्तन्यतमं रूपं गोपे विश्रम्भणं गतः शैलोस्मी तीव्रवन भूरी बलिम आदन्विहन वपुः। तात्पर्य में लिखा है कि भगवान कृष्ण स्वयं एक रूप में ब्रजवासियों के साथ में है और दूसरा रूप बहुत बड़ा धारण करते हैं और अपना परिचय देते हैं गोवर्धन पर्वत के रूप में, और आज भी कृष्ण और गोवर्धन के स्वरूप का आदर किया जाता है। जो भक्त हैं गोवर्धन पर्वत की शिलाएं लेकर के उनकी पूजा करते हैं। अब आगे कृष्ण ब्रजवासियों समेत गोवर्धन पर्वत के स्वरूप को नमस्कार करते हैं और क्या कहते हैं कि देखो ये पर्वत कितना कृपालु है जो हमें इस प्रकार से दर्शन दे रहा है, इनको नमस्कार करो। तस्मै नमो ब्रज जने सहचक्र आत्मनात्मने अहो पश्यत शैलोसौं रूपिनो अनुग्रहं विधान। तात्पर्य में लिखा है इस तरह बालक कृष्ण ने वृंदावन वासियों को अपने गोवर्धन पर्वत रूपी नए अवतार के समक्ष नमन करने को कहा और सबको बतलाया कि ये गोवर्धन के इस देवी रूप ने उन पर बहुत बड़ी कृपा की है। आगे कृष्ण क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये गोवर्धन पर्वत जो है उनको नष्ट कर देता है जो इनका सम्मान नहीं करता, इसलिए हम लोग इनका सम्मान करें, इनको नमस्कार करें। क्यों? जिससे हमारी सुरक्षा हो और गौओं की सुरक्षा हो। एषो वजानतो मर्त्यान् कामरूपी वनौकसहान् हन्ति यस्मै नमस्यामहं शर्मणे आत्मनो गवाम्। इस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा समुचित ढंग से गोवर्धन यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए हुए गोप गौएं और ब्राह्मण कृष्ण के साथ अपने गांव ब्रज में लौट आए। इत्यद्री गोद्विजय मखम वासुदेव प्रचोदिता यथा विधाय ते गोपाम सा कृष्णा ब्रजम ययुः। तो आगे फिर क्या होता है, इंद्र को जब पता चलता है तो बहुत ही गुस्सा होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो वह नंद महाराज और अन्य गोपों पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मानते थे। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय वेताम नृपेण गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्च कोपः। तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि अब इंद्र की मूर्खता यहाँ प्रकट हो रही है। इंद्र क्यों नाराज है, क्योंकि वृंदावन वासियों ने कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया है। आगे क्रुद्ध इंद्र ने ब्रह्मांड का विनाश करने वाले बादलों को भेजा जो सामर्थक कहलाते हैं। तो इंद्र अपने को परमेश्वर मानते हुए बादलों को कह रहा है। गणम सामर्थकम नाम मेघानाम चांदकारिणाम इंद्र प्रचोदयन क्रुद्धो वाक्यम चाहे से मान्युते। इंद्र क्या कहता है, जरा देखो तो ये वनवासी जो ग्वाले हैं कितने घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली और हमारे जैसे देवता का अपमान कर दिया। अहो श्रीमते महात्म्यम गोपानाम काननोकसाम कृष्णम मर्त्यम पाश्रत्यम ये चक्रुर्देव हेलनम। आगे इंद्र बादलों से कह रहा है, उन्होंने श्री कृष्ण के शरण उसी प्रकार ग्रहण की है जैसे कोई व्यक्ति आत्म ज्ञान को त्याग करके यज्ञों की नाव में चढ़कर भव सागर को पार करने का मूर्खता पूर्ण प्रयास करता है। यथा दृढ़ है कर्म मय कृतभिर नामनो निभय विद्या मान वीक्ष किम हित्वा तीर शांति भवारणम। इन वालों ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुता पूर्ण कार्य किया है, क्योंकि कृष्ण अपने को अत्यंत चतुर मानते हैं किंतु वे मूर्ख हैं, उद्धत हैं और बातुनी हैं। तो इन बातों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्यम गोपामे चक्रुरप्तिजम। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्यम गोपामे चक्रुरप्रियम। अब तात्पर्य लिखा है, श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार इंद्र के अपमान के माध्यम से देवी सरस्वती कृष्ण की प्रशंसा कर रही हैं। इंद्र तो कह रहे हैं कि बालिशम है ना, तो बालिशम का मतलब एक बच्चा है, बालक है, लेकिन सरस्वती ने इसका अर्थ ये भी निकाल दिया है कि बालक की भांति किसी बनावट से रहे। बच्चे में क्या है कि कपट नहीं होता है, कोई बनावटीपना नहीं होता है, जो है सरलता होती है। तो यहाँ पर कृष्ण का एक गुण सरस्वती ने जो है ना इंद्र से जो शब्द निकलवाए हैं मुख से, तो उनके दूसरे भी अर्थ निकलते हैं। तो बालिश का मतलब ये भी है कि सरलता है कृष्ण में। फिर स्तब्ध, स्तब्ध का अर्थ है क्या, उद्धत उद्दंड है। स्तब्ध का अर्थ सरस्वती ने जो शब्द निकाला है इसका अर्थ ये भी है कि वे किसी के समक्ष नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि उन्हें किसी को नमस्कार नहीं करना है। फिर अज्ञ, अज्ञ का मतलब अज्ञानी है। सरस्वती ने इसका अर्थ ये निकाला है कि अज्ञ मतलब कि कुछ और जानने के लिए शेष नहीं है, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, उनको कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं,
उनको जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, अज्ञ है। फिर पंडित मानिनम, अपने को पंडित समझना, तो इसका अर्थ ये भी है कि वे ब्रह्मवादियों द्वारा अत्यधिक सम्मानित है। हाँ, पंडित जिनका सम्मान करें, पंडित माने का एक अर्थ ये भी है कि जिसका सम्मान बड़े बड़े पंडित करते हैं, पंडित माने नम। और वाचालम, कहे कि वाचालम, तो कृष्ण की निंदा कर रहा है। वाचालम, लेकिन वाचाल का मतलब ये भी है जो निडर होकर के भाषण करे उसको वाचाल बोलते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण की निंदा के रूप में भी क्या हुई, कृष्ण की प्रशंसा हुई। अब इंद्र ने मेघों से कहा कि ये लोग बहुत घमंडी हो गए हैं और कृष्ण इनको और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इनके घमंड को बढ़ा रहे हैं कृष्ण, अब तुम जाओ इनका घमंड चूर कर दो और उनके पशुओं का विनाश कर दो। श्रियाम एताम श्रिया वलिप्तानाम कृष्णेन आत्मा पितात्मनाम धुनुत श्रीमदस्तंभम पशोन्नयत संशयम। इस श्लोक से स्पष्ट है कि वृंदावन वासी एकमात्र गऊ की रक्षा करने से समृद्ध बन चुके थे, क्योंकि इंद्र उनके पशुओं को मारकर उनकी संपत्ति पर आश्रित उनके गर्भ को चूर करना चाहता था। ठीक से चराई गई गौएं प्रचुर मात्रा में दूध देती हैं, जिससे पनीर मक्खन दही घी आदि प्राप्त होते हैं। तो गौओं के कारण ये ब्रजवासी बहुत समृद्ध हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात से निष्कर्ष निकालते हैं, शिक्षा देते हैं कि गौओं की रक्षा होनी चाहिए, गौओं से आपकी समृद्धि बढ़ेगी। और इंद्र क्या कह रहा है, किससे कह रहा है? मेघों से कह रहा है। और क्या कह रहा है कि उनके पशुओं को मार दो, पशुओं का मतलब गौओं को मार दो, खत्म कर दो गौओं को। और कृष्ण जो है जो योजना बनाई थी गोवर्धन पर्वत को उठाने की, वो उसमें क्या था, गौओं की रक्षा के लिए। तो गोरक्षा का कार्य कितना पुण्य का है, इसीलिए तो कृष्ण अपना पुण्य रखा था ना उस बाण में कि करोड़ों करोड़ों गौओं की हत्या करने के लिए इंद्र ने प्रयास किया था, है ना। तो उसको इतना इतना ज्यादा गो हत्या का पाप लगा इंद्र को, और कृष्ण को जो ना कितनी गोरक्षा का पुण्य मिला, करोड़ों करोड़ों गौओं की रक्षा की कृष्ण ने पर्वत उठा करके। तो वो इतना पुण्य था जो सुधन्वा को मारने के लिए अर्जुन के बाण में कृष्ण ने रखा था, गोवर्धन उठाने का पुण्य था, वो बहुत पुण्य था। तो इंद्र क्या कह रहा है, मैं अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर और अपने साथ मरुद गणों को लेकर के नंद महाराज के गांवों को विध्वंस करने के लिए तुम लोगों के पीछे पीछे चल रहा हूं, चलो तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे चल रहा हूं। अहम च ऐरावतम नागम आरोहयानु ब्रजे ब्रजम मरुद गण एर महावेगैर नंद गोष्ठ जिघांसयाम। अब श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इंद्र के आदेश से प्रलयकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चरागाहों पर गए, समय से पूर्व उनको बंधन खोल दिया। वो बंधे हुए थे, उनका बंधन खोला जाता है कब, नैमित्तिक प्रलय के समय, मैंने बताया ब्रह्मा जी के दिन के अंत में उनको बंधे हुए हैं, उनको खोला जाता है, इससे भी पता चलता है कि वो बंधे रहते हैं, है ना। और नैमित्तिक प्रलय होता है किस समय होता है, 4,32,00,000,000 साल के बाद, है ना, नैमित्तिक प्रलय होता है 1000 चतुर्युगी के बाद, है ना। लेकिन बीच में ही खोल दिया, ये 7वां मनमंत्र चल रहा है ना, 14 मनमंत्रों के बाद खोला जाता है, है ना। जिनको खोलना चाहिए रात में उनको खोल दिया, दोपहर में ही तो खोल दिया। तो ब्रह्मा जी का भी दिन चल रहा है, 7वां मनमंत्र चल रहा है, उस समय खोल दिया है ना। और एक स्थान पर ही, केवल एक स्थान पर ही जो है ना बरसाना है, पानी बरसाना है, नंद के ब्रज में पानी बरसाना है।
इत्थम अग्रवतां मेघा निर्मुक्त बंधनं नंद गोकुल मासारें पीड़िया मासुरोजसं।
तो बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चरागाहों पर गए, वहां भी ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करके उन्हें सताने लगे। तात्पर्य लिखा है ये सामर्थक मेघ समूची पृथ्वी पर एकमात्र विशाल सागर से छा सकते थे, इन मेघों ने महान शक्ति के साथ ब्रज की समतल भूमि को आप्लावित करना प्रारंभ कर दिया। गर्ग संहिता में तो ये भी हमने पढ़ा है कि दो प्रकार की वर्षा हो रही थी, एक वर्षा थी बूंदों की, और वो बूंद कितनी बड़ी थी, हाथी के बराबर बूंदें थी और दूसरी वर्षा होती धारा, और धारा कैसी थी, हाथी की सूंड की जैसी धारा थी। दोनों ही प्रकार की वर्षा बहुत खतरनाक होती है, बूंदें गिरे हाथी के बराबर और धारा गिरे हाथी की सूंड की जैसी, बहुत खतरनाक है। दो प्रकार की जो ना वर्षा हो रही थी भयानक वायु द्वारा प्रेरित बादल बिजलियों की चमक से प्रज्वलित होते और वर्षा करते हुए गरजने लगे। विद्युतमान विद्युत भीम स्तनता स्तन युक्त भीम तीव्र मरुदगण एर नुन्ना वब्रसुर जले सरकरण। अब बादलों ने खंभों जैसी मोटी धारा गिराना शुरू कर दी। सोचो हाथी की सोड़ जैसी या खंभे जैसी धारा गिराना शुरू कर दी, तो पृथ्वी बाढ़ से डूब गई और ऊंची नीची भूमि का पता अब नहीं चल रहा है, ऊंची नीची भूमि कहाँ है। इस थोड़ा थोड़ा वर्ष धाराम मुंचन स्वृत भीषण साम जलौघ प्लाव्यमाना भूर ना दृश्यते न तो उन्नतम। अत्यधिक वर्षा और वायु के कारण कांपती हुई गौएं और दूसरे पशु, सर्दी से पीड़ित ग्वाले और गोपियां सभी शरण के लिए गोविंद के पास पहुंचे। अत्यासारा तिमा तेन पशुओ जात विपन गोपा गोप्य सीतार्ताम गोविंदम शरणम ययु। विकट वर्षा से उत्पन्न पीड़ा से कांपती हुई गौएं, वर्षा से गौएं कांप रही हैं और अपने सिरों और बछड़ों को अपने शरीरों से ढकने का प्रयास करती हुई भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंची। गौएं भी कृष्ण के शरण ले रही हैं, बोल तो नहीं पाती हैं, मनुष्य की बोले तो नहीं बोल पाती हैं, लेकिन तो भी वो कृष्ण के शरण ले रही हैं गौएं। सिरहा सुतांत कायन प्रच्छाद्या सारे पीड़िता वेपमाना भगवतः पादमूलम उपाययुः। अब सब गोप और गोपियां कृष्ण से क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इन गौओं का उद्धार करें। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल हैं, कृपया आप हमें भी बचाएं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो प्रातुमर्हसि देवान्नहं कुपितात् भक्तवत्सल। अब कृष्ण को क्या कह रहे हैं, भगवान नहीं कह रहे हैं, महाभाग कहते हैं। महाभाग का मतलब बहुत भाग्यशाली। हाँ, तुम्हारा इतना भाग्य है कि तुम सब संकटों से बच जाते हो और तुम्हारे संग में हम भी बच जाएंगे तुम्हारे भाग्य से। कृष्ण को भगवान नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भाग्यवान। हाँ, कृष्ण जो ना इतने भाग्यवान हैं कि वो संकट से बच जाते हैं। कृष्ण के ऊपर बड़े बड़े संकट आए और कृष्ण बच गए संकटों से, है ना। तो कृष्ण के संग में हम भी कृष्ण के भाग्य से बच जाएंगे, इसलिए कहते हैं। और तुम जो ना अगर रक्षा करना चाहोगे तो और हमारी रक्षा हो जाएगी, और तुम भक्त वत्सल हो, है ना। तो तात्पर्य कहा है कि गर्ग जी ने भविष्यवाणी की थी कृष्ण के बारे में, है? ये नहीं कहा था कि भगवान है, ये भाग्यवान है। क्या कहा था, अनेन सर्व दुर्गानि योयम अंजस्तरिषत, इसकी इस बालक की सहायता से, इस बालक के भाग्य से आप आसानी से सारे कष्टों को पार कर लोगे, ये बालक बहुत भाग्यशाली है, है ना। तो गर्गाचार्य ने भी ये नहीं कहा कि भगवान है, अगर भगवान कहते तो फिर इतना स्नेह कैसे करते हैं कृष्ण के ऊपर, फिर तो आरती लेकर के पूजा करते, ओम जय जगदीश हरे। तो फिर बालक में जो है ना प्रेम कैसे होता। तो बालक में प्रेम को और पुष्ट करने के लिए गर्ग जी ने ये कहा कि ये बालक इतना भाग्यशाली है कि अगर तुम लोग इससे प्रेम करोगे तो तुम बड़े बड़े संकटों से पार हो जाओगे, है ना। तो जो है ना सब ब्रजवासी इसीलिए कृष्ण के भाग्य का आश्रय ले रहे हैं, है? तो वृंदावन वासियों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसी आपत्ति स्थिति में श्री नारायण उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण को शक्ति प्रदान करेंगे। नारायण कृष्ण के शरीर में आकर के मतलब कार्य कर रहे हैं, कृष्ण की अपनी शक्ति नहीं है, नारायण की जो ना शक्ति है कृष्ण के शरीर में जो कि कार्य करती है, वो ये मान रहे हैं। और कृष्ण को भी पता नहीं है ये सब। इस तरह से उनका कृष्ण के प्रति जो स्नेह है वो बढ़ता जाता है। उन्होंने कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था और कृष्ण उनके प्रेम को अंगीकार कर चुके थे। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये तो वृंदावन वासियों ने कहा, अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने देखा क्या, ओलों से और तेज वायु के प्रहार से गोकुलवासी अचेत हो रहे हैं। तो भगवान समझ गए क्या कि इंद्र की करतूत है, मैंने इंद्र को गुस्सा दिलाया। इंद्र को गुस्सा दिलाया। कृष्ण ने जब ब्रजवासियों को कहा कि हम लोग वनवासी हैं, हम लोगों को पर्वत की पूजा करनी चाहिए, तो इंद्र ने ये सब बातें जब सुनी तो वो भगवान की माया से भ्रमित हो गया। जब कृष्ण स्वयं यही कह रहे हैं कि हम लोग वनवासी हैं, इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं, इंद्र को फिर गुस्सा आया है कि नहीं, स्वाभाविक है। क्योंकि कृष्ण ने जो ना अपने को एक जो है ना एक छोटा सा बालक मान करके और बच्चों की तरह उन्होंने तर्क दिए, बच्चों की तरह बातें करें कि हम लोग गिरिराज की पूजा करें, हमें जो है और जरूरत नहीं इंद्र की पूजा करने की, क्या जरूरत है, इंद्र से हमारा कुछ लेना देना होता ही नहीं है, इंद्र कहाँ हमसे बातचीत करते हैं और हम कहाँ इंद्र से मिलते जुलते हैं, तो जरूरत क्या है इंद्र की पूजा करने की, जो हमको खाना देता है वही हमारा माई बाप है। तो ये जो गिरिराज महाराज हैं ये हमको जो ना पानी देते हैं, घास देते हैं, गऊओं को घास देते हैं, अच्छी हवा देते हैं, है ना, सब कुछ तो इनसे मिलता है, तो यही हमारे माई बाप हैं। तो इंद्र ने जब ये बात ये तर्क सुना, कृष्ण का ये तर्क है, तो फिर उसको गुस्सा आया, और कृष्ण यही चाहते थे कि इंद्र गुस्सा करे और उनकी ऐश्वर्य को भूल जाए, भगवत्ता को भूल जाए। अगर कृष्ण ने कहा होता कि नहीं नहीं इंद्र मेरा सेवक है और मैं आदेश दे रहा हूँ इंद्र की पूजा बंद करा दो, तो इंद्र सोचता कि हाँ भाई ये हमारे बॉस हैं, उन्होंने अगर रुकवा दी है तो ठीक है। लेकिन कृष्ण ने तो ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं इंद्र का भी बॉस हूँ इसलिए इंद्र की पूजा मत करो। अगर इंद्र को समाचार मिलता तो इंद्र कहता ठीक है हमारे बॉस ने पूजा बंद करवाई तो ठीक है, लेकिन एक वनवासी के रूप में, एक वनवासी बालक के रूप में वो कह रहे हम तो वनवासी हैं, हम तो बस इन्हीं की पूजा जानते हैं, हमें ज्यादा जानने की जरूरत क्या है, हम लोग कुछ जानते ही नहीं, ना पढ़े लिखे हैं, ना शास्त्र कभी पढ़े हैं, ना कुछ सीखे हैं, है ना, इस तरह से कृष्ण बोल रहे हैं, है ना, तो ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपमान किया। तो कृष्ण समझ गए कि इंद्र की करतूत है। शिलावर्षाति मातेन हण्यमानम चेतनम निरीक्ष भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतम हरिः। तात्पर्य लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इंद्र ने वृंदावन वासियों पर जो कहर ढाया वो भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों के प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए कृष्ण की लीला शक्ति की योजना है। क्योंकि इससे कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम और बढ़ता है, क्यों, आपत्ति आ गई, संकट आ गया, है ना, तो संकट में आपत्ति में वो कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण को घेरे हुए खड़े हैं, 7 दिन 7 रात क्या किया, ना खाया ना पिया और ना विश्राम किया, और क्या करते हैं, कृष्ण के कृष्ण का ही दर्शन करते हैं केवल, है ना, तो ये जो ना कृष्ण के लिए बहुत आनंददायक बात है कि ये ब्रजवासी लोग ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं ना सो रहे हैं, है? क्या कर रहे हैं, खाली कृष्ण को देख रहे हैं, और संकट में है, बहुत तेज पानी भी बरस रहा है ना, तो अपनी सुरक्षा जो है सुरक्षा में खड़े होकर के और कृष्ण का केवल दर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भूखा व्यक्ति जैसे जब उसको उत्तम भोजन मिलता है तो उसको बहुत आनंद आता है, भूख में जब भोजन मिले तो बहुत आनंद आता है ना, और संकट में जब ये सुरक्षा प्राप्त हो रही है तो उनको बहुत आनंद आ रहा है, है? बहुत आनंद आ रहा है। आप जो है आप सुरक्षित हैं और बहुत चारों तरफ बहुत संकट है, तो जब आप देखें तो आपको बहुत आनंद आता है कि देखो मैं सुरक्षित हूं और कितना बड़ा संकट है चारों तरफ, है ना, तो आनंद बढ़ जाता है। उसी प्रकार वृंदावन वासियों को भौतिक चिंता का अनुभव नहीं हो रहा है, जबकि कृष्ण ने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अब श्री कृष्ण अपने आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, चूंकि हमने उनका यज्ञ रोका है इसलिए इंद्र क्या कर रहे हैं, प्रचंड हवा और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं और बिना ऋतु की वर्षा कर रहे हैं, ये ऋतु नहीं है, वर्षा की ऋतु नहीं है, है? ये कार्तिक का महीना था, गोवर्धन पूजा जब हुई ना कार्तिक का महीना था, तो चतुर्मास का अंतिम महीना है, वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं तो वो कार्तिक का महीना अंतिम महीना होता है ना, तो हालांकि चतुर्मास के अंदर आता है जो वर्षा के चार महीने हैं, लेकिन चौथे महीने में ऐसी वर्षा होती थोड़ी है। ज्यादा वर्षा होती है श्रावण में और भाद्रपद में होती है वर्षा। तो अब भगवान क्या विचार करते हैं, मैं अपनी योग शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पात का पूरी तरह सामना करूंगा। तो भगवान कहते हैं अपनी योग शक्ति के द्वारा इसका प्रतिविधि करूंगा। प्रतिविधि माने एक दूसरी विधि निकालूंगा, इंद्र के कार्य में बाधा भी नहीं डालूंगा। इंद्र के पास जो शक्ति है भगवान चाहे तो वो छीन सकते हैं, है कि नहीं? भगवान के पास कई उपाय हैं, अगर भगवान चाहें तो ऐसी हवा चला दें कि वो सब बादलों को उड़ा दें, बादलों का ही पता ना चले। तो भगवान के पास कई उपाय हैं, हाँ, पानी की बूंद ना गिरने देते ऊपर ही रोक देते। तो भगवान के पास बहुत से उपाय हैं। ए बच्चे, शोर नहीं, ये किसके बच्चे हैं? यहाँ उछलना कूदना बंद, कोई शोर नहीं, दौड़ना कूदना ये सब बंद है, बिल्कुल शांत। हाँ, लेकिन भगवान इंद्र की कार्य में कोई बाधा ना डाल करके एक नया ही कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत उपाय हैं। किसी व्यक्ति के पास अगर बहुत उपाय होते हैं तो वो कहता है ठीक है, तू तो उसको जितना करना हो अपनी शक्ति लगा ले, मेरे पास कई उपाय हैं। तो कृष्ण जो है ना एक नया उपाय करना चाहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं तलवार मार दूंगा तुमको, मेरी पूजा करो, तलवार दिखाता है, मेरी पूजा कर नहीं तो तलवार से गला काट दूंगा तेरा। इंद्र कहता है मेरी पूजा नहीं करी, लो मैं अभी तुम्हें तुम्हारा विनाश करता हूँ, मेरी पूजा क्यों नहीं करी तुमने, है ना? तो भगवान कहते हैं घमंडी है, और इंद्र कहता है कृष्ण को घमंडी है, और उसका घमंड खुद जो ना निकल रहा है ना। तो भगवान सोचते हैं अपने विचार मन में सोचते हैं, इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं, मूर्खता अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझते हैं, मैं इसके अज्ञान को नष्ट कर दूंगा। तत्र प्रतिविधिं सम्यंग आत्मयोगेन साधये लोके समानिनां मोढ्यां हनिष्ये श्रीमदं तमहं। आगे भगवान क्या कहते हैं, चूंकि देवता सतोगुण से युक्त होते हैं अतः अपने को स्वामी मानने का मिथ्याभिमान उनमें नहीं होना चाहिए। सतोगुण में अभिमान नहीं होना चाहिए। जब मैं सतोगुण से विहीन उनके मिथ्या अभिमान को भंग करूंगा तो मेरा उद्देश्य उनको राहत दिलाना है, तो उनको शांति मिलेगी। अभी बहुत परेशान हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। नहि सद्भाव युक्तानां सुराणीं सुराणां इस विस्मयः मत्तो सतां मान भंगा रसमायोपकल्पते। देवताओं को तात्पर्य लिखा है, देवताओं को सद्भावना युक्त माना जाता है क्योंकि भी भगवान द्वारा नियुक्त है, भगवान के सेवक होते हैं। और भगवत गीता में 4:24 कहा गया है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान को समुचित रीति से दी गई भेंट आध्यात्मिक बन जाती है। देवतागण ब्रह्मांड के प्रशासन में विविध विभागों का कार्यभार संभालकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, अतएव देवताओं या भगवान के सेवकों के रूप में उनका अस्तित्व शुद्ध होता है सद्भाव। जब देवतागण भगवान द्वारा प्रदत्त उच्च पद के अनुरूप नहीं रह पाते और अपने समुचित व्यवहार से विपत होते हैं तो वे देवताओं के रूप में कार्य न करके बद्ध जीवों जैसा कार्य करते हैं। आगे लिखा है कि बढ़ा चढ़ा भक्त कभी भी भौतिक साज सामान से ठगा नहीं जाता, अभी तो वह इसका सदुपयोग भगवान के आनंद हेतु अपना कर्तव्य मानकर ईमानदारी से करता है। यहाँ पर इंद्र ये भूल गए कि वे ईश्वर के विनित सेवक हैं, इसीलिए कृष्ण इस मोहग्रस्त अवस्थ देवता को पाठ पढ़ाना चाह रहा है। अब कृष्ण अपने आप विचार कर रहे हैं, अतएव मुझे अपनी दिव्य शक्ति से इन गोपों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि मैं ही उनकी शरण हूँ, मैं ही इनका स्वामी हूँ और मेरे ये परिवार के हैं, मैंने अपने भक्तों की रक्षा का व्रत भी लिया हुआ है। तस्मान मत्सरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम
गोपाय स्वात्म योगेन सोयम मे व्रत आहिता। तात्पर्य मत शरणम सूचित करता है कि कृष्ण ब्रज जनों के एकमात्र शरण है, और ये भी कि उनके बीच कृष्ण उनके बीच में अपना घर भी बना रखा है। इस तरह शरणम शब्द घर या रक्षक का द्योतक हो सकता है। वृंदावन वासियों ने कृष्ण को अपना प्रिय बालक, मित्र, प्रेमी और प्राण मान रखा है, और भगवान इनकी भावनाओं को जानते हैं।
इस तरह कृष्ण इन भाग्यशाली लोगों के बीच रहते हुए उनके घरों तथा खेतों में विचरण करते थे। स्वाभाविक है कि वे ऐसे घनिष्ठ भक्तों की सभी प्रकार के खतरों से रक्षा करते। ये कहकर साक्षात विष्णु या श्री कृष्ण ने
एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया, जिस तरह कोई बालक कुकुर मुत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन चलम धारण लीलया विष्णु छत्राकम एवं बालक। तात्पर्य लिखा है हरिवंश में इसकी पुष्टि हुई है कि किसने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाया। सदृता संगतो में घेर गिरी सव्यन पाणिना, उन्होंने बाएं हाथ से पर्वत उठा लिया जो बादलों को छू रहा था। वो पर्वत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने जा रहे थे तो उनकी योग माया शक्ति की अंश रूपा संघारिकी ने आकाश से क्षण भर के लिए आकाश से बादलों को हटा दिया, जिससे जब वे अपने घर के आगे से पर्वत तक तेजी से दौड़कर गए तो ना तो उनका दुपट्टा भीगा और ना ही अन्य वस्त्र भीगे। आगे तत्पश्चात भगवान ने गोपों को संबोधित किया, हे माता, हे पिता, हे ब्रजवासियों, यदि इच्छा हो तो अपने गऊं समेत तुम अब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। अगर तुम लोग चाहो तो आ जाओ अंदर, भगवान कहते हैं। अथा है भगवान गोपान हेम बिता तजो कस यथो बजो संत गिरिगर तम तगोधना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि सामान्यतः विशाल गौ समुदाय जिसमें हजारों गौ में बछड़े सांड आदि थे, गोवर्धन जैसे पर्वत के नीचे नहीं आ सकते थे, किंतु भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर इस पर्वत ने हर्ष के कारण अचिंत शक्ति प्राप्त कर ली और क्रुद्ध इंद्र द्वारा किए गए हजारों वज्रों के आघातों को फूलों जैसा अनुभव किया। फूल जैसे फूल गिरे हों। कभी कभी तो गोवर्धन को ऐसा लगता था कि वज्र का आघात हो भी रहा है या नहीं। हरिवंश से स्वयं श्री कृष्ण के वचनों को भी आचार्य ने उद्धृत किया है। त्रैलोक्यम अपि उत्थहते रक्षितुम किं पुनर्ब्रजम्। ये गोवर्धन पर्वत तीनों लोगों को शरण दे सकता है, केवल ब्रज भूमि की तो बात ही क्या है। जब इंद्र का आक्रमण शुरू हुआ और कृष्ण ने पर्वत उठा लिया तो पर्वत के बगल में खड़े मृग, जंगली सुअर, अन्य पशु और पक्षी भी पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। उन्हें भी तनिक भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। अब भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों को जो है शंका हो सकती है कि कृष्ण के हाथ से पर्वत गिर सकता है, तो कृष्ण क्या कहते हैं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए कि ये पर्वत मेरे हाथ से छूटकर गिर जाएगा, ना ही तुम लोग हवा और वर्षा से भयभीत हो, क्योंकि इन कष्टों से तुम्हारे छुटकारे की व्यवस्था पहले ही हो चुकी है। भगवान का ये कहना है कि पर्वत ने पहले ही व्यवस्था की हुई है। कोई बात नहीं, बातें बिल्कुल नहीं, जो सामने खड़े हैं वो बैठ जाएं, कोई बात नहीं करेगा, कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये सामने जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, कोई बात नहीं करे, कोई खड़ा नहीं रहे। बिल्कुल बात नहीं। नत्रात है वह कार्यो मधस्ताद्रि निपातन वाद वर्ष भये नालम तत्राणम विहितम हिवाहम। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए गए मनो से वे सभी पर्वत के नीचे प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें अपने लिए और अपने गौएं छकड़ों सेवकों और पुरोहितों के लिए और परिवार के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया। तथा निर्विस्वर्गतम कृष्णाश्वासितमानस यथावकाशम सधना सब्रजा शोक जीविनः। भूख और प्यास भूलकर और अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं की चिंता ना करते हुए भगवान कृष्ण पर्वत को धारण किए हुए 7 दिनों तक वहीं खड़े रहे और सारे ब्रजवासी उन्हें निहारते रहे। क्षुत्रन्व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा ते ब्रजवासी भी वीक्षमाणो तथा रात्रिम तत्ताहम न चलत पदाम। विष्णु पुराण में लिखा है कि कृष्ण ने पर्वत को उठा लिया तो ब्रजवासी उनकी प्रशंसा करने लगे। अब उन सबों को उनके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ और वे उन्हें हर्ष युक्त और चकित नेत्रों से देख रहे थे। इस प्रकार सारे गोप और गोपियां प्रफुल्लित थे, स्नेह बस उन्होंने अपने नेत्रों को विस्फारित कर लिया। बड़े बड़े आंखें फाड़ फाड़ करके कृष्ण को देख रहे हैं सब ब्रजवासी और कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का पान करते हैं निरंतर। ब्रजवासियों को ना तो भूख लगी, ना प्यास लगी, ना थकान आई, क्योंकि वो अमृत है। कृष्ण की सुंदरता असली अमृत है, इसलिए ना तो थकान आ रही है, नींद नहीं आ रही है, ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लग रहा है। और कृष्ण भी उनके सुंदर रूपों को देख देखकर खाना पीना और सोना भूल गए। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इशारा करते हैं कि मेघों से 7 दिनों तक लगातार वर्षा होने पर भी मथुरा में बाढ़ नहीं आई, क्योंकि भगवान उस पानी को सुखा रहे थे, है ना। कैसे? सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र जो है उस पानी को सुखा रहा था, है? नहीं तो इतना पानी है तो वो तो फिर पर्वत के चारों तरफ तो बाढ़ पैदा करता। अब 7 दिन 7 रात लगातार पानी बरसा और कृष्ण ने पर्वत को धारण किया और इंद्र का प्रयास निष्फल हो गया। फिर अब इंद्र सोचता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मुझ में ही गड़बड़ हो रहा है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, है ना। देवता होने के कारण असुर हैं वो इतने इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं कि मेरे में गड़बड़ी है, वो डटे रहते हैं। दंभ तर्प अभिमान क्रोध कठोरता ज्ञान आसुरी संपत्ति बताई गई है, लेकिन इंद्र देवता है। इस कारण से क्या होता है कि जैसे कार्य में असफलता मिली तो उनको लगा कि नहीं नहीं मेरे से कुछ गलती जरूर हुई है, तो इंद्र ने विचार करना शुरू किया। इंद्र चकित हो गया कृष्ण की योग शक्ति के इस प्रदर्शन से, अपने मिथ्या गर्भ के चूर होने से और अपने संकल्प के नष्ट होने से उसने अपने बादलों को रुकने का आदेश दिया। कृष्ण योगानुभावम तम विषम्य इंद्रोति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान मेघान संयवार्य। अब भगवान जो है देखते हैं क्या वर्षा बंद हो गई है, हवा चलना बंद हो गई है, आकाश में बादल नहीं रहे और सूर्य उगाए हैं, तो गोवर्धनधारी कृष्ण ग्वालों से बोले, खम्भ्यभ्रम मुदिता आदित्यम वातिवर्षम च दारुणम सम्योपैरतम गोपान गोवर्धन धरो ब्रवीम। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हे गोपजनों, अब अपनी पत्नियों बच्चों और धन समेत बाहर निकल जाओ। धन समेत बाहर निकल जाओ, कौन सा धन? गाय। अपने धन समेत बाहर निकल जाओ, यानी गोधन, गायों के सहित बाहर निकल जाओ, अपना भय त्याग दो। तेज हवा और वर्षा रुक गई है और नदियों की बाढ़ का जल उतर गया है। निर्यात त्रासम गोपा शस्त्री धनार्भक उपारतम वाते वर्षम यदि प्रायाश्च निम्नगाम। अपने अपने गौएं समेट करके और अपनी सारी सामग्री और छकड़ों में लाद करके सारे गोप बाहर निकले। स्त्रियां बच्चे और वृद्ध पुरुष धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चले। ततस्ते निर्गोपाम स्वम समादाय गोधनम सकटोढोपकरणम स्त्री बालस्थ विराशनम। और भगवान क्या करते हैं, सबके देखते देखते उस पर्वत को भगवान उसी प्रकार रख देते हैं जैसे पहले से रखा था। किसी प्रकार का भी पर्वत जैसे रखा था पहले उसी प्रकार रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलयाम। और वृंदावन के सारे वासी प्रेम से अभिभूत थे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने अपने संबंध के अनुसार श्री कृष्ण को बधाई दी। जैसे ब्राह्मण तो ब्राह्मण कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी हो है? हर कार्य में सफलता प्राप्त हो है? इस तरह से। और जो जो और भी माता पिता जैसे थे तो सिर सूंघते हैं कृष्ण का, है ना, और रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं। और जो कृष्ण के सखा थे, है ना, तो वे कृष्ण की प्रशंसा करते हैं कि सखा तुमने तो बहुत अच्छा कार्य किया है, हैं, बधाई देते हैं। तो इस तरह से किसी ने उनका आलिंगन किया और कोई उनके सामने नतमस्तक हुआ। गोपियों ने दही अक्षत से मिला हुआ जल कृष्ण को चढ़ाया और आशीर्वादों की झड़ी लगाई। तम प्रेम वेगान निर्भृता वजौ कसों यथा समय परिरम्भणा दिभी गोप्यश्च सस्नेहम पूजयन मदान दक्षतान भिर जो सदा तात्पर्य में लिखा है कि वृंदावन के वासी कृष्ण को अपने ढंग से मानते थे। कोई अपने को छोटा मानते हैं कृष्ण से, कोई अपने को कृष्ण के समान मानते हैं, कोई अपने को कृष्ण से बड़ा मानते हैं। जो बड़े जो अपने को बड़ा मानते हैं वो कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं, और जो सिर को सूंघते हैं चूमते हैं कृष्ण को और अपने उंगलियों से दबाते हैं, स्नेह पूर्वक पूछते हैं कि बेटा थके तो नहीं तुम, तुमको शरीर में दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा। और कृष्ण के जो साथी बालक थे वो हंसी मजाक करने लगे, कृष्ण के साथ हंसी मजाक करने लगे। और जो छोटे लोग थे वो चरणों में गिरे और पांवों की मालिश कर रहे थे कि आखिर पूरा का पूरा पहाड़ का वजन तो पैरों पर ही था, लेकिन कृष्ण के पैरों की सेवा कर रहे हैं। और जो गोपियों के साथ जो ब्राह्मण पत्नियां थीं वो दही अक्षत वो भेंट कर रही हैं, कृष्ण के ऊपर चढ़ा रही हैं, आशीर्वाद देती हैं कि तुम दुष्टों का दमन करो और सज्जनों की रक्षा करो, माता पिता को आनंद प्रदान करो, धन से वैभव से समृद्ध हो जाओ, आशीर्वाद देते हैं। माता यशोदा, रोहिणी, नंद महाराज और बलराम जी ने कृष्ण का आलिंगन किया। स्नेह अभिभूत होकर उन सबों ने कृष्ण को अपने अपने आशीर्वाद दिए। यशोदा रोहिणी नंदो रामस्य मलिनाम बना कृष्ण मालिंग युजुम आशिषाम स्नेह कातराम। हिरजन स्वर्ग में सिद्ध और साध्य गंधर्व और चारण और सब देवताओं ने मिलकर के भगवान का गुणगान किया और आकाश से फूलों की वर्षा की। जब तक पर्वत के नीचे थे तब तक तो पता भी नहीं चलता ना, अगर गुणगान करते भी, जब कृष्ण ने पर्वत रख दिया तो खुले आकाश में अब देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर और गुणगान कर रहे हैं। दिव्य देव गणा सिद्धाम साध्या गंधर्व चारण तुष्ट वर्म चुस्तुष्टा पुष्प वर्षाणी पार्थिव। तात्पर्य में लिखा है स्वर्ग के देवता गण भी उतने ही हर्षित थे जितने की वृंदावन के वासी इंद्र के अलावा इंद्र के अलावा बाकी जो देवता थे वो हर्षित थे। क्योंकि उनका तो कोई अपराध नहीं हुआ। इंद्र ने अपराध किया तो वो जो है अब बहुत चिंतित हो गया। इंद्र की चिंता बढ़ गई, बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई, बिना सोचे समझे कुछ बातें बोल दी, उसके मुंह से निकल भी गई बहुत सी बातें बिना सोचे समझे। हे परीक्षित, देवताओं ने स्वर्ग में तेजी से शंख बजाए, दुंदुभियां बजाई और श्रेष्ठ गंधर्व गीत गाने लगे। शंख दुंदुभयो ने दुर दिवि देवे प्रचोदिता जगुर गंधर्व पतियन तुम्बुरो प्रमुखा नृप। अब कृष्ण जो है कहां पर आए, उस स्थान पर आए जहां गौ चरा रहे थे। बलराम जी और ग्वाल मित्रों के साथ घिरे हुए कृष्ण वहां पहुंचे और जो गोपियां हैं वो कृष्ण के गुणों का गान करती हुई अपने अपने घरों में आई। ततो अनुरक्त पशुपय परिस्थितम राजन सुगोष्ठम सबलो ब्रजन हरिः तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिकां गायन्त ईयुर्मुदिता हृदि स्पृशः। खातर में लिखा है गोपियों ने अपने घरों को लौटने के पूर्व अपने प्रेमी श्री कृष्ण से आंखें मिलाई। कृष्ण के विषय में खुलकर बातें वो नहीं कर पाती थीं क्योंकि गांव की कुमारियां थीं, किंतु अब उन्हें अद्भुत प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ तो खुलकर कृष्ण के सद्गुणों का गान किया। अब कौन मना करेगा कृष्ण का गुणगान करने में, तो कृष्ण की चर्चा करने में उनको बहुत शर्म आती थी, बहुत लज्जित थी, लेकिन अब उनको बहुत अच्छा अवसर मिल गया कृष्ण की चर्चा करने का। ये स्वाभाविक है कि एक नवयुवक किसी सुंदर युवती के समक्ष अद्भुत कार्य करना चाहता है ना, तो कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्व धारण करके अवसर का लाभ उठाया गोपियों को प्रभावित करने का। गोपियां अति सुंदर और शुद्ध हृदय वाली युवतियां थी और श्री कृष्ण उनके समक्ष अत्यंत अद्भुत कार्य संपन्न किए, हीरो बन गए। हीरो जो है स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए कोई काम अच्छा करता है तो पर्वत उठा करके वो वृंदावन के हीरो भी बन गए, सब स्त्रियां जो है ना उनकी चर्चा करती हैं। फलस्वरूप उनके कोमल हृदयों में गहरे प्रवेश कर गए, कृष्ण बहुत गहराई से प्रवेश कर गए उनके हृदय में। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण शीर्षक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की कथा है, ये 25वां अध्याय हुआ और भगवान की अवस्था कितने साल की है, 7 साल की है ना। अब कोई प्रश्न है किसी का? इनका अच्छा प्रश्न है कि कृष्ण की अब क्या स्थिति हुई, क्योंकि अभी तक तो जैसे पूतना को मारा तो सब काम जो है ना छिप करके करते रहे, कपट पूर्वक करते रहे कि बालकों की जैसी चेष्टा कर रहे हैं और ब्रजवासी सोचते हैं कि बालक की रक्षा हो गई है ना, और बालक ने क्या किया, बालक ने तो कुछ किया ही नहीं है ना, वो कैसे मर गई हा? ये तो कुछ नारायण का जो है ना कुछ खेल है, विशेष प्रभाव है, ऐसा सोचते रहे। जो यमराजन वृक्ष उखाड़े थे कृष्ण ने, तो उसमें भी ब्रजवासियों को जो है विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण ने उखाड़े वृक्षों को, यद्यपि उखल दोनों पेड़ों के बीच में ही फंसा था, पेड़ों के गिरने के बाद भी उखल फंसा हुआ था, जिससे कि स्पष्ट कारण दिखाई पड़ रहा था कि खींचा उखल खींचा और क्या है, लेकिन ब्रजवासियों ने विश्वास नहीं किया कि ये ऐसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, अनुभवी थे इसलिए। अभी अब कहां तक जो है ना वो सोचें कि कृष्ण की शक्ति नहीं हो सकती है ना। तो एक तो ये उत्तर है इसका कि गर्गाचार्य ने कहा था कि भाग्यशाली है ना, इसके भाग्य से रक्षा हो जाएगी, तो कृष्ण के भाग्य से जो है ना कृष्ण जो कार्य करना चाहते हैं वो हो जाता है ना। तो कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसने उठाने की कोशिश की पर्वत को तो उठ गया है ना, और फिर कृष्ण ने भी कहा था कि इनको नमस्कार करो तो ये रक्षा करेंगे, तो गोवर्धन पर्वत जो है ना स्वयं हल्के हो गए कृष्ण के हाथ में है ना। तो एक ये भी कारण बन गया कि कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई है ना, तो गोवर्धन फिर कृष्ण के ऊपर विशेष कृपा करेंगे ही क्योंकि उन्होंने उनका प्रचार किया है ना, तो पूजा कराई कृष्ण ने, तो गोवर्धन जी जो है ना जरूर एहसानमंद होंगे कृष्ण के, तो कृष्ण के हाथ में हल्के हो गए ये भी माना है ना। और गर्ग जी ने जो कहा था कि नारायण की शक्ति कार्य कर रही है कृष्ण के उस शरीर में, तो वो नारायण जो है ना कृष्ण के शरीर में कार्य कर रहे हैं ये माना है ना। तो कहीं पर ऐसा भी बताया गया है कि कृष्ण ने कहा भी कि हाँ मुझे सपना दिया था गिरिराज जी ने कि जब संकट आए तो घबराना नहीं है और ऐसा करना, तो मुझे सपना दिया था गिरिराज जी ने, ऐसा किया। लेकिन गर्ग संहिता में तो और मतलब घटना आगे बढ़ गई। अच्छा आप सबको सुनाई पड़ रहा है साफ साफ क्योंकि हमें ये भी देखना है ना कि एक ये भी सुन रहा है इसमें भी जा रही है, और ये कई सालों के लिए पता नहीं 100 साल तक भी इसमें जो है ना जो आवाज है वो रहेगी आपके कान में, तो अभी जा रही है और रहेगी या निकल जाएगी। इसमें जो आवाज जा रही है मेरी वो पता नहीं कितने सैकड़ों सालों तक भी रहेगी है ना, तो मुझे वो भी देखना है। और भी कितने कान है यहाँ पर वो भी सुन रहे हैं, आप आगे आ जाओ आप और आगे आ जाओ
मैं देख रहा हूँ ये माइक कितना भाग्यशाली है, बिल्कुल आपके आंखों के नजदीक।
तो गर्ग संहिता में ये घटना जो है ना बहुत मतलब गंभीर हो गई, बहुत आगे बढ़ गई, और अब जितने ब्रजवासी हैं वो सब इकट्ठे हो गए नंद महाराज के दरवाजे पर हैं, और बड़ी भारी शिकायत आ गई नंद महाराज की, सब ब्रजवासियों ने मिलकर के बहुत बड़ी शिकायत कर दी कि अब तो हम आपको जाति से बाहर निकाल देंगे हैं। क्या कहते हैं कि अब आप नंद महाराज आपको हम अपनी जाति से बाहर निकालेंगे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो तुम्हारा बालक है कृष्ण है इसका अद्भुत रहस्य है, ये तुम्हारा पुत्र भी नहीं है, तुम्हारे जैसे गुण इसमें है ही नहीं, तुम वैश्य हो, तुम तो एक पत्थर भी नहीं उठा पाओगे अपने हाथ से, और इसे 7 दिन तक उठाया, और फिर इसका जो ना स्वभाव भी वैश्य जैसा नहीं है, क्षत्रियों जैसा स्वभाव है, रंग खैर रंग की तो बात नहीं करी उन्होंने, लेकिन ये कहा कि स्वभाव भी वैश्यों की तरह नहीं है,
क्षत्रिय जैसा स्वभाव है, भयानक पराक्रम है। अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो मैं कथा को संक्षिप्त कर रहा हूँ, तो ब्रजवासियों को फिर कृष्ण के प्रति विश्वास तब पैदा हुआ कि वे परमेश्वर हैं, जब कृष्ण ने मोतियों के बीज बोए तथा उन बीजों से मोतियों के वृक्ष हुए तथा उनसे बड़े बड़े मोती उत्पन्न हुए। धन्यवाद।